स्वतंत्र सोच क्या है? ये सरल या अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन 40 वर्षों के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि स्वतंत्र सोच का एक सूत्र निश्चित रूप से मौजूद है, और मैं इसके लिए आपका रास्ता छोटा करने का इरादा रखता हूँ। बाद में मैं उन 6 उपकरणों की सूची बनाऊंगा जो स्वतंत्र रूप से सोचना संभव बनाते हैं। मैं स्वतंत्र विचार पर तब पहुंचा जब मैंने सफलता की अपनी दौड़ के बारे में सोचने से लेकर यह समझने तक का स्तर बढ़ाने की कोशिश की कि मैं कैसे सोचता हूं और क्या चीज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। स्वतंत्र विचार वास्तव में विचार की एक पद्धति है जो कई स्तरों पर बेहतर विचार उत्पन्न करती है। हम हमेशा किसी ऐसी चीज से एक विचार बनाने का प्रयास करते हैं जो संभवतः सच है, और उन चीजों की तुलना में मिथकों या लोगों की राय को खारिज करने से डरते नहीं हैं जो एक राय नहीं है, जैसे कि पृथ्वी गोल है। जब आप निःशुल्क लागू करते हैं विचार से, स्वतंत्र विचार से, आपको ये पता चलता है कि आपको विचार से लाभ देखना है, न कि केवल एक विचारक की राय से, जिसका अर्थ है वित्तीय, स्वास्थ्य, सामाजिक लाभ और सामान्य तौर पर कमाई। यदि हाँ, तो स्वतंत्र विचार का सूत्र यहाँ प्रस्तुत है, लेकिन किसी भी नई चीज की तरह आपको इसका अभ्यास करना होगा। यद्यपि विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग जाते हैं, प्रारंभिक सुधार तत्काल होता है। स्वतंत्र विचार ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, विकास, मानव विज्ञान, तर्कशास्त्र से जानकारी को क्रॉस रेफरेंस करके निर्णय लेने का मार्ग बताता है, और असत्यापित धारणाओं को निष्प्रभावी करना। स्वतंत्र विचार में आप आमतौर पर उच्चतम संभावना के साथ सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं। सूचना के अनेक स्रोतों को तर्क के साथ पार करना ही स्वतंत्र विचार का आधार है। जब आप कुछ पूछते हैं जिसका उत्तर होता है ऐसा ही है, या हर कोई ऐसा ही करता है, तो आमतौर पर एक स्वतंत्र विचार ये दिखाएगा कि यह एक गलती है। हर कोई कहाँ है? मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, यदि आप पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार, व्यवसाय, पर्यावरण आदि के बारे में जो कहते हैं वह सच है, तो हर कोई कहाँ है? पोषण प्रोफेसर क्यों नहीं कहते हैं सब्जियों में विष होते हैं? सरकार प्राधिकरणों को अलग क्यों नहीं करती? फ्री रेंज मुर्गियों को क्यों नहीं पाला जाता ताकि अंडे हमारे लिए जहरीले न हो? शिक्षा मंत्रालय हर किसी को गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कैसे मजबूर नहीं करता, जबकि यह हर किसी की पहुंच में है? इसके लिए एक तार्किक व्याख्या है। रुकिए एक पल के लिए मेरे साथ, मेरी बात क्यों सुने? मुझे नहीं लगता कि बिना कोशिश किए मेरी बात सुनना सही है। अपने दम पर इन निष्कर्षों तक पहुंचें या जांचें कि क्या चीजें वास्तव में काम करती हैं, ये सब बिना किसी जोखिम के, निश्चित रूप से। लेकिन यह मेरे अनूठे जीवन पथ पर ध्यान देने योग्य है जिसने मेरे सोचने के तरीके को आकार दिया। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता माँ और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पिता के साथ बड़ा हुआ। उनके माता पिता अपने परिवार में एकमात्र नरसंहार से बचे थे। होलोकॉस्ट हर समय घर में मौजूद था और अपने साथ बड़ा और अलग सोचने की ललक लेकर आया। जब मैं 10 साल का था तो हम 2 साल के लिए सिलिकॉन वैली चले गए। इन वर्षों के दौरान मैं अमेरिकी संस्कृति से परिचित हुआ, हर चीज को उत्तम बनाने और हर चीज के लिए एक विधि बनाने की आवश्यकता। इसके अलावा मैंने दूसरी भाषा में कौशल हासिल किया जो 2 भाषाओं में 2 अलग अलग रास्तों पर सोचने के साथ आता है। अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान मैंने शेयर बाजार में हाथ आजमाया और आर्थिक समाचार पत्र पढ़े। उसके बाद मैंने टेक्नियन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और 7 सेमेस्टर के बाद डीन ऑनर्स के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की, एक ऑनलाइन ब्लैकजैक प्लेटफॉर्म, फिर मैंने एक ऑनलाइन कैसीनो स्थापित किया, फिर एक सशुल्क बैकगैमन साइट। अंततः हमने +500 की स्थापना की जिसने पिछले दशक में $2 बिलियन से अधिक की कमाई की। +500 की सफलता के बाद मैंने स्वतंत्र सोच के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, जिसका पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है, और मैं इस पद्धति का उपयोग करके निर्णय लेने की मदद से उन सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में सक्षम था जो मुझे परेशान कर रही थीं। मेरे जीवन पथ ने मुझे ये समझने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया कि मेरी पद्धति क्या है, इसे व्यवस्थित करने और यह सोचने के लिए कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि दूसरों के लिए रास्ता छोटा किया जा सके। हालांकि आपको ये याद रखना होगा कि मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तकनीक। मैं न तो डॉक्टर हूं, न सेना का जनरल, न ही मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, लेखक, गणितज्ञ या दार्शनिक। लेकिन मैं इन सभी विषयों का पता लगाने और उन्हें स्वतंत्र विचार के साथ छूने से नहीं डरता। शून्य भय। मैं कोई कोच नहीं हूं। कोचों ने एक तरीका ईजाद किया और उससे पैसा कमाया। मैंने पैसे कमाए और आपके लिए विधि लाया। केवल ये तथ्य कि मैं व्यवसाय में सफल रहा हूं, ये गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं सही हूं। मुख्य विचार आपको विधि सीखने में सक्षम बनाना है। स्वतंत्र रूप से सोचना, स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष पर पहुंचना, लाभ उत्पन्न करना, वो जीवन जीना जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। किताब पढ़ना या व्याख्यान सुनना आपको स्वयं स्वतंत्र विचार विकसित करने में मदद करेगा। इस बात की बहुत कम संभावना है कि स्वतंत्र आवाज आप तक पहुंचेगी। जिन लोगों को स्वतंत्र विचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्तर और समाधान मिलते हैं, वे पूछते हैं, यदि पूरी जनता गलत है तो प्रोफेसर कुछ क्यों नहीं कहते? उसकी आवाज को उच्चारित करने के लिए कि यह आवाज आप तक पहुंचेगी और आप इसे सुनने के लिए सहमत होंगे। ये चार संभावनाओं का गुणन है। कम संभावना। इसके अलावा नए शोध निष्कर्षों को व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने में समय लगता है, क्योंकि शोध को अभ्यास में अनुवाद करने की प्रक्रिया, जिसे ज्ञान अनुवाद के रूप में जाना जाता है, में कई साल लग सकते हैं। सरल समाधान में कोई लाभ नहीं है। एक और उत्तर यह प्रश्न अर्थशास्त्र की दुनिया से आता है। यदि प्लास्टिक सर्जन, जो लिपोसक्शन उपचार से लाभ कमाता है, अपने मरीजों को केवल अपना आहार बदलने, गेहूं के उत्पाद, तेल और चीनी कम करने के लिए कहता है, तो उसके पास आजीविका नहीं होगी। इसलिए सिद्धांत रूप में यह सरल और आसान हो सकता है, लेकिन व्यवहार में मरीज शायद उसकी बात नहीं सुनेंगे और शायद स्वयं डॉक्टर भी इस समाधान पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए लिपोसक्शन NIS 20,000 में बेचा जाता है, न कि किताब की तरह NIS 80 के लिए मुफ्त पोषण। बड़े समाधान आमतौर पर व्यावसायिक कंपनियों द्वारा लाए जाते हैं। दूसरी ओर स्वतंत्र विचार के समाधानों के लिए आमतौर पर दवाओं की खरीद या बड़े वित्तीय निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आर्थिक मॉडल और व्यावसायिक हित के अभाव में हम उन्हें पेशेवरों या विभिन्न उद्योगों से नहीं सुनेंगे। उदाहरण के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए पोषण संबंधी परिवर्तन से व्यवसाय मॉडल बनाना कठिन होगा। लोग बिना किसी प्रयास के त्वरित समाधान चाहते हैं। अधिकांश लोग सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम प्रयास करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अच्छा भोजन, सुंदर साथी, पैसा, एक साफ सुथरा घर, एक विशाल बगीचा, एक शानदार इत्र, स्थिति चाहते हैं, लेकिन वे न तो रब्बा में ऊर्जा लगाना चाहते हैं और न ही इस सब के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं। स्वतंत्र विचार कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी इसे नहीं समझते हैं। मेरे लिए ये स्पष्ट है कि एक अच्छा पेशा सीखना आलसी लोगों के लिए वॉल्ट मैसेंजर बनने की तुलना में अधिक उपयुक्त है, क्योंकि एक अच्छे पेशे में आप आलसी हो सकते हैं। मैं हमेशा से आलसी रहा हूं, इसलिए मैंने एक ऐसा पेशा सीखा जहां कंप्यूटर मेरे लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, एक निवेश प्रबंधक जिसने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, 4 साल की कठिन पढ़ाई के बाद वॉल्ट कुरियर की तुलना में कम मेहनत करता है, जिसे पूरे दिन चलते रहना पड़ता है। भ्रामक बात यह है कि शुरुआत में बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, हालांकि उसके बाद वर्षों में एक अच्छे पेशे में कम प्रयास का निवेश किया जाता है। औसत समग्र प्रयास कम है, जिस समस्या के कारण लोग शुरुआती प्रयास से कतराते हैं वो औसत गणना की अंकगणितीय त्रुटि है। छोटे प्रयास और बड़े लाभ का एक और उदाहरण, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर से सीने में जलन की शिकायत करता है तो डॉक्टर तुरंत उसे एंटासिड की गोली दे देगा। वो शायद उसे यह नहीं समझाएगा कि सीने में जलन उसके आहार के कारण हुई, चावल या उसके द्वारा खाए गए तेल में मौजूद विषाक्त पदार्थों के कारण। मेरे लिए ये स्पष्ट है कि नियमित रूप से गोलियां लेने और यहां तक कि उनके दुष्प्रभावों से पीड़ित होने की तुलना में आहार में बदलाव करना और समस्या को हमेशा के लिए हल करना आसान है। बहुत अधिक स्वतंत्र विचारक नहीं है आज बहुत अधिक स्वतंत्र विचारक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन विचारों के साथ हम बड़े हुए हैं उनसे अलग होना और अपना मन बदलना बहुत कठिन है। एक स्वतंत्र विचारक होने का संबंध बुद्धिमत्ता या IQ से नहीं है, ये केवल सोचने के एक अलग तरीके को जानने से संबंधित है, जैसा कि स्वतंत्र सोच के लिए उपकरणों में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत सुधार हुआ है और आज आप हर चीज को पढ़ सकते हैं, वो पुस्तक जो कभी प्रकाशित हुई हो, शोध सारांश प्राप्त करें और ChatGPT से जटिल प्रश्न पूछें जिनके लिए आपको अतीत में महीनों तक विश्वविद्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। मेरा मतलब है, 50 साल पहले एक स्वतंत्र विचारक होना वास्तव में उपयोगी नहीं था, जब सूचना, ज्ञान और विज्ञान आज से बहुत अलग थे। तो आपका लाभ कहाँ है? आपका लाभ अपने अनूठे तरीके से स्वतंत्र रूप से सोचने में है। मुझ पर भरोसा मत करो, मैं बहुत गलत हूँ, हालांकि यह आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि मुझे गुमराह किया जा रहा है। हर कोई अपने तरीके से सुंदर है, सोचने के लिए इस सुंदरता का लाभ उठाएं स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से। दुनिया तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कारों की आदि है और अखबार उनसे प्यार करते हैं और मानवता अपने भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। इसके विपरीत प्रौद्योगिकी और विज्ञान हमारे जीवन में सुधार नहीं करेंगे। यही समस्या उत्पन्न होती है कि गैर तकनीकी खोजों को भुला दिया जाता है और उनके बारे में बात नहीं की जाती है, भले ही आपके जीवन पर उनका प्रभाव किसी भी तकनीकी आविष्कार से कहीं अधिक हो। स्वतंत्र विचार अक्सर गैर वैज्ञानिक या तकनीकी खोजों की ओर ले जाता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों ने स्वतंत्रता की घोषणा और अमेरिकी सरकार की संरचना लिखी, तो प्रेस ने ये घोषणा नहीं की कि संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साम्राज्य में बदलने वाली सरकार की प्रणाली का आविष्कार किया गया है। महत्वपूर्ण आविष्कार वैज्ञानिक नहीं, मानवीय हैं। तकनीकी आविष्कारों की नकल की जाती है, लेकिन सांस्कृतिक और पारस्परिक आविष्कारों की उपेक्षा की जाती है। कुछ साल पहले जब उन्हें पता चला कि गेहूं लोगों के लिए जहरीला है क्योंकि इसमें कीटों को पौधे को नष्ट करने से रोकने के लिए जहर पाया जाता है, तो किसी ने भी इसके बारे में सदी के आविष्कार के रूप में बात नहीं की। आज तक इसे भुला दिया गया है, लेकिन ये सैकड़ों लोगों को जहर देता है। लाखों लोग इसे बहुत कम लोग समझते हैं। अब आप उन कुछ लोगों में से एक हैं। परिवर्तन का विरोध किसी भी क्षेत्र की तरह चिकित्सा और विज्ञान में परिवर्तन का विरोध हमेशा होता है। ये जड़ जमाए हुए विश्वासों, वित्तीय हितों या केवल ज्ञात और परिचित चीजों पर टिके रहने की मानवीय प्रवृत्ति के कारण हो सकता है। हमारी सोच आलसी है, इसे जगाने में मदद करें, स्वतंत्र रूप से सोचें। सबसे खतरनाक चीज वह है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, अप्राप्त लाभ। सबसे पागलपन भरा गैर वित्तीय लाभ उन धारणाओं के विपरीत है जिन पर हम बड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी वास्तव में ये जांच नहीं करता है कि वे सच हैं या नहीं, और फिर आप ही हैं और वे भी आपके अंदर विदेशी एजेंटों की तरह आपके जीवन में फंसे हुए हैं। जैसे सब्जियां खाना स्वस्थ है, 46 साल की उम्र तक मैंने जांच नहीं की थी यह धारणा बिल्कुल, और जब मैंने जांच की तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। आप इसके साथ मुफ्त आहार में पड़ सकते हैं। ठीक इसके विपरीत करें, कड़ी मेहनत करें, जब बाकी सभी लोग जा रहे हों तो शेयर बाजार से भाग जाएं, महंगे कपड़े खरीदें, सब कुछ अपना सर्वश्रेष्ठ करें, डॉन रूढ़िबद्ध धारणाएं न बनाएं और धारणाएं न बनाएं। ये चीजें वास्तव में न केवल वित्तीय बल्कि हमारे लाभ के लिए भी अच्छी नहीं है। सच्चाई कई बार उनके विपरीत होती है। हम हर चीज की व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत करने वाला वास्तव में एक खतरनाक मूल्य है। व्यवसाय में सबसे खतरनाक लोग ऊर्जावान और नासमझ हैं, क्योंकि वे समाज में ऊर्जावान रूप से बकवास फैलाते हैं। न्यूनतम प्रयास और अधिकतम लाभ के साथ काम करने से समय के साथ सबसे बड़ा मुनाफा होता है, न कि कड़ी मेहनत से। एक स्टीरियोटाइप सुरक्षा के लिए एक विकासवादी विशेषता है। हमें कभी कभी एक सेकंड में यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए खतरनाक है या उसके लिए। ये स्पष्ट है कि एक स्टीरियोटाइप इस बिंदु पर हमारी मदद करता है। मुफ्त में एक उबाऊ परिभाषा विचार। मानसिक स्वतंत्रता शारीरिक स्वतंत्रता जितनी ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र विचार सोचने का एक नया तरीका है जो मानसिक स्वतंत्रता और कुछ हद तक शारीरिक स्वतंत्रता, पैसा और इसी तरह की कमाई प्राप्त करने में मदद करता है, और दोनों के संयोजन में है सच्ची आजादी। आजादी विज्ञान और तर्क एक साथ गलत नहीं होते, इसलिए जब वे दोनों किसी चीज का संकेत देते हैं तो ये दिलचस्प होता है। जब उनके बीच संघर्ष होता है तो आपको स्वतंत्र विचार करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य एक बार इस समझ के साथ बड़ा हुआ कि गुलामी तार्किक है, इसलिए हम जिसके साथ बड़े हुए हैं उसका कोई खास मतलब नहीं है अगर हम खुद ही सब कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दुनिया के अधिकांश कठिन प्रश्नों को सूचना, विज्ञान, तर्क, विकास, इतिहास, मानव विज्ञान और विचार की सहायता से हल किया जा सकता है, जो कि इन सभी उपकरणों का संगठन है। स्वतंत्र विचार हर चीज में ऊर्जा का न्यूनतम निवेश चाहता है, जीवन के हर क्षेत्र में भारी मुनाफा। इस तरह मैंने +500 की स्थापना की। कंपनी ने किया 10,000 गुना निवेश। आप जो सुनते हैं वह एक राय है और जरूरी नहीं कि सच हो, और जो आप देखते हैं वह एक दृष्टिकोण है और जरूरी नहीं कि वास्तविकता हो। दूसरों की राय और सीमित कल्पना तक सीमित न रहें। उदाहरण के लिए, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या आपको दौड़ने के लिए जूतों की जरूरत है। विकास से पता चलता है कि अधिकांश समय वे नंगे पैर घूमते थे। तर्क कहता है कि जमीन पर प्रभाव के कोण बदलने के कारण जूते दौड़ने का रूप बदल देते हैं। विज्ञान बताता है कि नंगे पैर दौड़ने पर झटके छोटे लगते हैं। तर्क, विकास और विज्ञान के बीच एक अंतर संबंध है। अब देखने के लिए हमें इसे खुद पर आजमाना होगा। स्वतंत्र विचार में दरार आ गई है। हम सूचनाओं में डूब रहे हैं, लेकिन उसमें अंतर्दृष्टि की तलाश में हैं। यहां सिग्नल को शोर से अलग करने का प्रयास करने का स्वतंत्र विचार आता है। स्वतंत्र विचार तर्क और सूचना के बीच का खेल है। जानकारी विज्ञान, गणित, प्रयोग, अवलोकन या किसी भी चीज से प्राप्त की जा सकती है जो उच्च स्तर की संभावना के साथ एक तथ्य सामने लाती है। जानकारी हमें सही दिशा में ले जाती है, लेकिन अंत में जो निर्णय लेता है उसे यथासंभव कम भावना के साथ हमारा तर्क होना चाहिए। भावना वास्तविकता को अस्पष्ट कर देती है। जानकारी तर्क पर निर्भर करती है, इसलिए आपको ये जानने का अभ्यास करना होगा कि जानकारी कब उच्च संभावना के साथ सत्य है। स्वतंत्र विचार दुनिया में किसी भी विषय के बारे में स्वतंत्र सोच है, जो इस धारणा पर आधारित है कि उनके सत्य होने की उच्च संभावना है। ये गेंद को किक मारने की विधि या किसी अन्य विधि की तरह ही सोचने की एक विधि है। इस सत्य तक उच्च संभावना के साथ समय, तर्क, कारण और अनुभवजन्य अवलोकन, और यह सब एक स्वतंत्र विचार से पहुंचा जा सकता है। तरीका स्वतंत्र विचार के बारे में कुछ भी आध्यात्मिक या रहस्यमय नहीं है। इसके विपरीत, ये जानकारी पर तर्क लागू करने और उस पर समय समर्पित करने की एक विधि पर आधारित है जो अन्य नहीं करेंगे। स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए हमें अपनी सोच के पूर्वाग्रहों को समझना चाहिए। स्वतंत्र विचार आपको मामले के स्रोत तक ले जाना चाहिए। अक्सर अन्य लोग इसे नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई और तरीका है। उदाहरण, क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चों की दंत समस्याओं का एक बड़ा हिस्सा मुंह से सांस लेना है, नाक से नहीं? वे कहते हैं कि हमारा पर्यावरण और हमारे माता पिता यह निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन हमारा निर्णय लेना तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कारक, और जब स्वतंत्र विचार हो तो यह अधिक प्रभावी होता है। बड़ी दरार यह है, आमतौर पर स्वतंत्र विचारक इंजीनियरिंग जैसे विश्लेषणात्मक क्षेत्र से नहीं आते थे, वे मानवतावादी क्षेत्र से आते थे, और यहां ये दुनिया के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से क्षेत्रों के बारे में इंजीनियरिंग तरीके से सोचने की स्वतंत्र सोच है। का सरकार, स्वास्थ्य आदि, जिनसे इंजीनियर विचार स्तर पर निपटते नहीं हैं। उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया कोआ एक विशिष्ट नीलगिरी का पत्ता खाता है और लगभग केवल वही। यूकलिप्टस की जहरीली पत्तियां खाने से अन्य सभी जानवर मरने की हद तक पीड़ित होंगे। स्वतंत्र विचार का अभ्यास करके उच्च संभावना के साथ यह मान लेना संभव है कि प्रत्येक जानवर अपेक्षाकृत विशिष्ट भोजन के लिए उपयुक्त है, और यहां से थोड़ा आगे बढ़ें और मान लें कि मनुष्य सब कुछ खाने के लिए नहीं है, केवल अपेक्षाकृत विशिष्ट भोजन खाने के लिए हैं जो उन्हें मिला है हजारों वर्षों से। उदाहरण के लिए, एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए लंबा होना अच्छी बात है, लेकिन क्या ऊंचाई से खाना संभव है? और यहीं से स्वतंत्र विचार की शुरुआत होती है। क्या बास्केटबॉल में ऊंचाई ही सफलता का एकमात्र पैमाना है? महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में सबसे मजबूत गुण क्या हैं? आप एक नौसिखिया खिलाड़ी को क्या सिखा सकते हैं? क्या बास्केटबॉल में पेशेवर बनने की कोशिश करना भी उचित है? संभावनाएं क्या हैं? सुधार लाने के लिए उपकरण तैयार करना संभव है, उदाहरण के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण, पड़ोस में प्रशिक्षण। जब आप सफल एथलीटों की जांच करते हैं तो आपको पता चलता है कि अन्य खेलों में भाग लेने से आपको लाभ मिलता है, आपको युद्ध उपकरण जो दूसरों के पास नहीं है। और यहां से आप अधिक सामान्य बिंदु पर जा सकते हैं, भागीदारी के किसी भी क्षेत्र में जब आपके पास अन्य व्यवसायों से अनुभव होता है तो यह एक बड़ा लाभ लाता है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जो एक निवेशक भी था, प्रबंधक व्यवसाय के अंदर और बाहर को बेहतर ढंग से जानता है। हमारे दिमाग में हमेशा हर चीज के बारे में एक कहानी होती है, एक तरह का बुनियादी आधार। वह कौन सा बुनियादी आधार है जो हमारा साथ देता है और हमें अन्य बुनियादी धारणाओं को देखने की अनुमति नहीं देता है? खाओ हर भोजन में एक अनाज और फलियां कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं वही करूं जो उसने किया तो मैं सफल हो जाऊंगी। फलों की चीनी स्वास्थ्यवर्धक है। ये समझने के लिए कि स्वतंत्र विचार क्या है, आपको अपनी बुनियादी धारणाओं को हटाना होगा और उनका पुनर्निर्माण करना होगा। अंत में इस प्रश्न पर पहुंचने के लिए कि क्या सब कुछ गलती पर आधारित है या वास्तविक चीज पर, आपको कैसे पता? पूछना। गणितीय और सांख्यिकीय ज्ञान बहुत उपयोगी है क्योंकि वे डेटा आधारित विचार विकसित करने में मदद करते हैं, न कि भावना। मुक्त विचार परियोजना में एक दृष्टिकोण होता है जो अक्सर सामान्य धारणा के विपरीत होता है, शायद इसलिए कि स्वतंत्र विचार तर्क पर आधारित होता है। तथ्य, किसी की राय बदलना और उन तथ्यों को प्राप्त करने का अवसर देना जो हर तरह से हमारे विश्व दृष्टिकोण का खंडन करते हैं, यहां तक कि सबसे स्पष्ट विषय भी। हम अपने डीएनए में मानसिक रूप से आलसी हैं और इसलिए शायद शोध में पड़े बिना अपने आराम क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। एक व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से सोचता है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने विचारों और विचारों को आकार देता है और उन तथ्यों पर आधारित होता है जो स्वयं स्पष्ट होते हैं। यानी खुद को साबित करें। विचार चलने के समान है। जो लोग एक दिशा में चलते हैं और अधिक समय तक चलते हैं, वे अधिक नई जगहें देखते हैं। बुद्धि या ज्ञान की परवाह किए बिना ये केवल समय की बात है। शारीरिक रूप से चलें और मानसिक रूप से चलें, आप नई जगहें देखते हैं। मुक्त विचार परियोजना में सारी जानकारी है। हाल के वर्षों में मेरे पास इस पाठ को पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के लिए सुझाव जमा हुए हैं। मेरा ज्ञान शोध और मेरे द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव और निश्चित रूप से स्वतंत्र विचार पर आधारित है। परियोजना का लक्ष्य जानकारी को सभी के लिए सुलभ बनाना है और सबसे बढ़कर आप में स्वतंत्र सोच विकसित करना है, क्योंकि केवल इसी तरह से, तकनीक से नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं। फ्री थॉट प्रोजेक्ट में मैं खुली, आलोचनात्मक और शोधपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करता हूं, और फिर भी उचित स्तर की विनम्रता के साथ, यह अभी भी एक दृष्टिकोण है और चीजों को अपनी आंखों और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से देखता हूँ। मेरे लिए ये स्पष्ट है कि मनुष्य के रूप में हम कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न हैं और यहाँ प्रस्तुत सभी विचारों में कोई एकरूपता और 100% अनुकूलता नहीं है। लेकिन पढ़ते समय अपने आप को चुनौती देने और ईमानदारी से जांच करने का प्रयास करें और कुछ ग्रंथों से आपके मन में उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध के बावजूद अधिक गहराई तक जाने, प्रश्न पूछने और संदेह करने की कोशिश करें जब तक कि आप सत्य के स्थान पर न पहुंच जाएं। स्वतंत्र विचार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, बस क्योंकि हर कोई कुछ कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि यह सही काम है। दुनिया में किसी भी विषय के बारे में स्वतंत्र सोच का प्रयोग करें और एक वैज्ञानिक या शोधकर्ता की तरह जो कुछ भी आपको बताया गया है वह सच नहीं है, इस पर सवाल उठाना और फिर यह पता लगाने की कोशिश करना कि शायद मैं गलत हूं और यह सच है। स्वतंत्र सोच की कमी ज्ञान की कमी से नहीं, केवल अभ्यास की कमी से उत्पन्न होती है और यह किसी भी स्वीकृत धारणा का खंडन कर सकती है। हम इनमें से कुछ धारणाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। जब बाहर ठंड हो तो आपको सर्दी लग सकती है। हमें खेलना सीखना चाहिए क्योंकि खेलने से हमारी क्षमताएं विकसित और समृद्ध होती हैं। सवाल यह है कि आप ये कैसे करते हैं? स्वतंत्र सोच कैसे विकसित करें? स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले इस अवधारणा को स्वीकार करना होगा कि शायद कई बुनियादी चीजें जिन्हें हम पूर्ण सत्य मानते हैं वे बदल भी सकती हैं। हमने एक बार सोचा था कि चीनी स्वास्थ्यवर्धक है, कि दुनिया सपाट है और महिलाएं चुड़ैले हैं जिन्होंने दुनिया को आतंकित कर दिया है। आज इसके बारे में सोचकर भी हंसी आती है, लेकिन एक समय ये ऐसी सच्चाइयां थीं जिन पर कोई विवाद नहीं था और अगर आप नाव लेकर समुद्र में जाते थे तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ता था कि कहीं आप दुनिया के अंत में न गिर जाएं। गरीब एटलस का मुखिया। इसलिए कई बार यह समझना आवश्यक होता है कि कोई बात सच क्यों है या सच नहीं है, जानकारी कहां से आई, इसे किसने आगे बढ़ाया और वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। क्योंकि आमतौर पर कोई कारण या कानून, किसी प्रकार की भौतिकी होता है जो ये जानने में मदद करता है कि जो परीक्षण किया जा रहा है वो सही है या नहीं। उदाहरण, क्या किसी प्रसारण को तुरंत स्थानांतरित करना संभव है? उत्तर, नहीं, क्योंकि प्रकाश की गति से अधिक होना असंभव है। जो कानून हमारी मदद करता है वो प्रकाश की गति को सीमित करने का कानून है। स्वतंत्र सोच को विकसित करने और प्रशिक्षित करने का एक और तरीका सैद्धांतिक किताबें पढ़ना है, जहां आप बहुत सारे दिलचस्प सिद्धांत और विभिन्न प्रकार की धारणाएं पा सकते हैं। गैर स्वतंत्र विचारों की सीमाओं को तोड़ने के लिए मुख्य बिंदु, जिसके हम आदि हैं, उन बुनियादी समझ तक पहुंचना है जो सही और सत्य हैं और तथ्यात्मक डेटा पर आधारित हैं। मुद्दा यह है कि कई मुद्दों पर हमारी राय अन्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित होती है जो हमने बच्चों और किशोरों के रूप में जमा की थी और हमारे जीवन के शुरुआती वर्षों में किए गए कार्यों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, जब हम एक वास्तुकार से एक बड़ा घर डिजाइन करने के लिए कहते हैं, हम इस बुनियादी आधार पर भरोसा करते हैं कि एक बड़ा घर एक अच्छी चीज है और यह हमें गुणवत्तापूर्ण और बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। ये वो बातें हैं जो हम में से कई लोगों ने बचपन में अपने माता पिता के घर पर या अन्य जगहों पर सुनी थी। यह आधार वास्तव में किस पर आधारित है और यह कई लोगों के लिए एक तथ्य कैसे बन गया? क्या अफवाहें हमें उन महत्वपूर्ण विचारों को रखने के लिए सुरक्षित आधार दे सकती हैं जो हम वयस्कों के रूप में रखेंगे? मैं दावा नहीं करता, क्योंकि उदाहरण के लिए एक बड़े घर को अधिक सफाई, अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है और उसका पर्यावरणीय प्रभाव भी बड़ा होता है। प्रकृति मुझे खुश करती है, यह निश्चित रूप से एक सुरक्षित धारणा है। मेरी गोपनीयता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यह एक सुरक्षित धारणा है। स्वतंत्र विचार की मदद से कोई ये देखता है और नोटिस करता है कि मेरे लिए वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह है प्रकृति के करीब रहना, घर पर रहना, आने वाली हवा को महसूस करना और गोपनीयता रखना। स्वतंत्र विचार की सहायता से तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि निसंदेह मेरे पास एक छोटे से घर में भी ये चीजें हो सकती हैं। मेरे लिए बड़े घर में रहना जरूरी नहीं है। ये कम से कम मेरे लिए कौन सा घर सही है, इसके बारे में मेरी धारणाओं का संग्रह है। किसी और के लिए ये अलग स्थितियां होंगी। जो महत्वपूर्ण है वह है अपने सत्य पर कायम रहना, और यह सत्य कई छोटे छोटे सत्यों पर आधारित है जिनकी आपने रास्ते में पुष्टि की है और वे आपके लिए सत्य हैं। और फिर भी स्वतंत्र विचार के साथ आप हर चीज का खंडन कर सकते हैं। हर्ज़ल को स्वतंत्र विचार के बारे में कुछ कहना था। मेरी राय में हर्ज़ल महानतम स्वतंत्र विचारकों में से थे। उसने सपना देखा और अपने सपने के बारे में लिखा, लेकिन एक सपने से भी अधिक उन्होंने लिखा और प्रदर्शन किया। उन्होंने कुछ हद तक आक्रामक रूप से और हमारे समय के लिए राजनीतिक रूप से सही नहीं होने वाली गलत मान्यताओं को तैयार किया जिनके साथ हम बड़े हुए। मानव भीड़ जन्म से लेकर कब्र तक पूर्वाग्रहों को खिलाती है, और इसलिए चूंकि हम पूर्वाग्रहों को खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें अपने लिए जीतना होगा अल्टन्यूलैंड पुस्तक से। हर किसी की तरह वह 100% सही नहीं है, क्योंकि हम सभी गलत मान्यताओं के साथ बड़े हुए हैं, सिर्फ भीड़ के साथ नहीं। और स्वतंत्र विचार के बारे में हर्ज़ल ने आगे लिखा, लेकिन ध्यान दे, इस जगह पर आपने जो कुछ भी लगाया है वह बेकार और सूख जाएगा अगर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उदारता और मानवता का प्यार इसमें नहीं पनपेगा। आपको इन सभी को विकसित करना होगा और उन्हें अपने बीच बढ़ने और समृद्ध होने देना होगा। और निश्चित रूप से अल्टन्यूलैंड की पुस्तक में पृष्ठ 165, ये स्वतंत्रता है जिसके लिए हम वास्तविक इंसान बनते हैं। ज्ञान एक अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन की तरह है, राजनेता और वैज्ञानिक जो 1561 से 1626 तक जीवित रहे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहावतों में से एक है, ज्ञान ही शक्ति है। यह वाक्यांश उनके बड़े काम मेडिटेशन सैक्रे से आया है और समय के साथ इसकी व्याख्या की गई है। ज्ञान ही शक्ति है कहावत ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देती है और यह कैसे व्यक्तियों और समाजों को सशक्त बना सकती है। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकता है, सोच समझकर निर्णय ले सकता है और समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। यह वाक्यांश आत्मनियंत्रण के संदर्भ में और दूसरों को प्रभावित करने के संदर्भ में नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले ज्ञान की क्षमता पर भी जोर देता है। बेकन के समय में ये कथन क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने अधिकार पर पारंपरिक निर्भरता को चुनौती दी थी और लोगों को अवलोकन, प्रयोग और आलोचनात्मक सोच के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। वैज्ञानिक पद्धति और अनुभवजन्य साक्ष्य के मूल्य पर उनके जोर ने आधुनिक विज्ञान के विकास और विभिन्न विषयों में ज्ञान की खोज पर बहुत प्रभाव डाला। स्वतंत्र विचार अंतर्दृष्टि तक पहुंचने का एक मानसिक और गैर वैज्ञानिक तरीका है। सुकरात यशाया की यात्रा लीबोविट्स 1903-1994 एक इजरायली बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे जो धर्म, राजनीति और नैतिकता सहित विभिन्न विषयों पर अपने विवादास्पद और विचारोत्तेजक विचारों के लिए जाने जाते थे। वो इजरायल की नीतियों के मुखर आलोचक और धर्म और राज्य के अलगाव के प्रबल समर्थक थे। लीबोविट्स ने स्पष्ट रूप से अन्य दार्शनिकों की तरह स्वतंत्र सोच की अवधारणा का उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनके कुछ विचारों को इससे जोड़ा जा सकता है। अवधारणा सामान्य तौर पर वह आलोचनात्मक सोच, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए और अधिकार या परंपरा का आंख बंद करके पालन नहीं करना चाहिए। लीबोविट्स ने धार्मिक हठधर्मिता की आलोचना की और धर्म को एक विचारधारा में बदलने के खिलाफ चेतावनी दी। उनका मानना था कि धार्मिक प्रथाओं को भगवान की पूजा पर केंद्रित किया जाना चाहिए और राजनीतिक, राष्ट्रीय या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि बौद्धिक स्वायत्तता और संशयवाद के महत्व पर जोर देते हुए धार्मिक अधिकारियों पर सवाल उठाना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें चुनौती देना व्यक्ति की भूमिका है। आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना और किसी की मान्यताओं में विरोधाभासों को उजागर करना। उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर दिया प्रश्नों और संवाद के माध्यम से। एक दिन प्राचीन ग्रीस में प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से जुड़ी एक सच्ची कहानी सामने आई। सुकरात को पूछताछ की अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए जाना जाता था, जो जटिल विचारों को समझने में मदद करने के लिए लोगों से सवाल करते थे। इस दृष्टिकोण के कारण अक्सर मनोरंजक स्थितियां पैदा होती थीं। इस विशेष दिन पर सुकरात एथेनियन बाजार में घूम रहे थे, जब उनकी नज़र युवाओं के एक समूह पर पड़ी जो स्वतंत्र सोच की अवधारणा पर चर्चा कर रहे थे। सुकरात ने उत्सुक होकर बातचीत में शामिल होने का फैसला किया। युवाओं ने बहस की कि क्या समाज के मानदंडों का पालन करना बेहतर है या स्वतंत्र रूप से सोचना बेहतर है। उनमें से एक, जिसका नाम टोपिट्स था, ने दावा किया कि समाज की प्रगति के लिए स्वतंत्र सोच आवश्यक है। क्रिटो नाम के एक अन्य व्यक्ति ने जोर देकर कहा कि व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए सामाजिक मानदंडों का पालन आवश्यक है। सुकरात ने अपनी बुद्धि और जिज्ञासा से युवाओं से एक प्रश्न पूछा, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र विचारक और एक स्वतंत्र विचारक के बीच अंतर बता सकते हैं। बस भ्रमित हो गए। अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक युवकों ने जोरदार बहस शुरू कर दी। टफ्ट्स ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र विचारक वह व्यक्ति है जो यथास्थिति पर सवाल उठाता है और नए विचारों का पता लगाने से डरता नहीं है। क्रिटो ने प्रतिवाद किया कि एक भ्रमित व्यक्ति ने भी स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने बिना किसी स्पष्ट निर्देश या उद्देश्य के ऐसा किया। सुकरात ने ध्यान से सुना और जब युवकों ने अपने तर्क समाप्त कर लिए तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा, आप दोनों ने वैध बातें कही हैं। हालांकि मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एक सच्चा स्वतंत्र विचारक वह है जो न केवल यथास्थिति पर सवाल उठाता है, बल्कि सत्य के जितना करीब हो सके खोजने की कोशिश करता है और सत्य से लाभ उठाता है। सत्य को निश्चितता के साथ नहीं जाना जा सकता है। लाभ के बिना कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। दूसरी ओर एक भ्रमित व्यक्ति उन अवधारणाओं की वास्तविक समझ या विश्लेषण के बिना प्रश्न करता है जिन पर उन्हें संदेह होता है। सुकरात के शब्दों की बुद्धिमत्ता से नवयुवक आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि स्वतंत्र चिंतन की कला के लिए केवल प्रश्न पूछने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए लाभ और दांव की आवश्यकता होती है। इसके लिए गहरी समझ और जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता की भी आवश्यकता थी। इसके लिए सत्य पर दांव लगाने की आवश्यकता है। जो कुछ तथ्यात्मक है उसका भी खंडन किया जा सकता है या ये सत्य के निकटतम चीज पर दांव है। ये सच हुआ करता था कि दुनिया सपाट है या सब्जियां स्वास्थ्यवर्धक हैं। आपके पास मौजूद सभी डेटा से सच्चाई पर दांव लगाने का विचार एक स्वतंत्र विचार है। लाभ आवश्यक है क्योंकि अन्यथा आप सिर्फ एक विचारक हैं। लाभ वास्तविकता से संबंध बनाता है। मैंने निश्चित रूप से सिर्फ ये बताने के लिए कहानी का आविष्कार किया है बिंदु। क्या आपको ये पसंद आया? खूबसूरत चीजें जिन्हें स्वतंत्र विचार की मदद से समझा जा सकता है। सुंदरता की खोज में ये तर्क दिया जा सकता है कि मानवता का अंतिम लक्ष्य सौंदर्य पूर्णता तक पहुंचना है। जहां तक इसराइल में मुद्दे का सवाल है, चुनावी प्रणाली और सरकार, न कि स्वयं लोग, समस्या की जड़ हैं। भविष्य के लिए एक ठोस निवेश शिक्षा है, जिसमें बचपन की शिक्षा और शिक्षा जैसे विभिन्न रूप शामिल हैं। वनस्पति तेलों को मोटापे की महामारी में योगदान देने वाले कारक के रूप में पहचाना गया है, जो उन्हें स्वस्थ जीवन शैली के लिए एक खराब विकल्प बनाता है। सामाजिक नेटवर्क, टैबलॉयड और संदेह वाले कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से अधिकांश गलत धारणाओं पर आधारित है और इसे लेखक की राय के रूप में माना जाना चाहिए। झटके को अवशोषित करने के लिए दौड़ने वाले जूते की आवश्यकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि पहले सोचा गया था। इसके बजाय जिस तरह से हम कार्य करते हैं वो वास्तविक समस्या हो सकती है। पढ़ने से बच्चों में बुद्धि का विकास होता है, जिससे इसे बढ़ावा देने के लिए यह एक मूल्यवान गतिविधि बन जाती है। हालांकि यह उल्टा लग सकता है, पौधों में विभिन्न तंत्र होते हैं जिनकी व्याख्या हमें मारने या रोकने की कोशिश के रूप में की जा सकती है। इंजीनियर दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले पेशेवरों में से हैं और यह प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी की निरंतर खोज हमें वांछनीय भविष्य की ओर नहीं ले जा सकती, क्योंकि यह पर्यावरण विनाश में योगदान करती है। इसके बजाय प्रौद्योगिकी विरोधी को अपनाना और प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण हो सकता है। हालांकि डॉक्टरों के पास महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और जीवन बचाने का कौशल है, लेकिन उनके प्रशिक्षण में अक्सर समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। जब आप बारीकी से देखेंगे तो कई जटिल समस्याओं के आश्चर्यजनक रूप से सरल समाधान हो सकते हैं। प्रकृति और प्रौद्योगिकी की शक्तियों के संयोजन से सभी को समृद्धि प्रदान की जा सकती है। हालांकि इसके लिए प्राकृतिक सोच के प्रति मानसिकता में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर काम करना, न कि इसके विरुद्ध। प्रकृति को हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें इसे अपनाना चाहिए और पशुपालन, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक पोषण जैसे क्षेत्रों में इसके ज्ञान से सीखना चाहिए। 6 स्वतंत्र रूप से सोचने के उपकरण। निम्नलिखित नियम आपको स्वतंत्र रूप से सोचने और लाभ होने पर लाभ उठाने में मदद करेंगे। अवसर। ध्यान दें कि अधिकांश समय लाभ का कोई अवसर नहीं मिलता। लाभ वित्तीय, शारीरिक, आध्यात्मिक या यहां तक कि आपके बेटे ने गोल किया हो सकता है। आपको ये जानना चाहिए कि स्वतंत्र विचार में महारत हासिल करने में कई साल लग जाते हैं। ये पियानो बजाने जैसा है। आपको इसका अभ्यास करना होगा। सिर्फ उनके बारे में पढ़ना संभव नहीं है और फिर यह आपका प्यार लौटाएगा। तर्क आपका अपना तर्क है, यह आपको परिभाषित करता है। ये हर किसी के लिए अलग है और उनके लिए एक अलग वास्तविकता बनाता है। आपको स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए अपने तर्क का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। जब आप अंत में स्वतंत्र विचार को सक्रिय करते हैं तो तर्क सभी सिद्धांतों को जोड़ता है और उत्तर देने वाला होता है। अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछने की आदत डालें जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? या आप हमेशा दूसरों पर दोष क्यों मढ़ते हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते? चार्ल्स डार्विन ने एक प्रकृतिवादी के रूप में HMS बीगल पर यात्रा की। उनकी यात्रा उन्हें अद्वितीय गैलापागोस द्वीप समूह सहित कई विविध वातावरणों में ले गई। वहां उन्होंने कछुए और फिंच जैसी संबंधित लेकिन विशिष्ट प्रजातियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक अपने विशेष द्वीप के लिए अनुकूलित थी। विविधताओं से प्रभावित होकर उन्होंने घर पर विभिन्न प्रजातियों और उनके वातावरण के बारे में और अधिक सीखा। इन अवलोकनों ने उन्हें प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया, जो प्रस्तावित करता है कि प्रजातियां जीवित रहने के लिए फायदेमंद अनुकूलन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती हैं। इस प्रकार डार्विन के गहन अवलोकन कौशल ने विकास की उनकी समझ को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। डार्विन अब तक के सबसे महान स्वतंत्र विचारकों में से एक थे। ये स्वतंत्र विचार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह आपकी इंद्रियां ही हैं जो आपको अगले शिकार के लिए सुराग लाएंगी। दृष्टि की भावना सबसे महत्वपूर्ण है, न केवल हमारे मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा हम जो देखते हैं उसे समझने में व्यस्त है। अवलोकन की सुंदरता यह है कि यह कई बार आपके लिए अद्वितीय होता है। आप अपनी आंखों से क्या देखते हैं, यहीं से समाधान शुरू होता है। क्या आपके पास प्रश्न या समस्या का व्यक्तिगत अनुभव है? यदि आप पागल नहीं हैं, तो यह माना जा सकता है कि यह आपके लिए सबसे सुरक्षित चीज है, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसका उपयोग करें आदि। डेटा विज्ञान से अलग है, जहां आप गणना करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। जानकारी के साथ आप खुद को आधार बनाते हैं दूसरों की गणना और समाधान। स्वतंत्र सोच का आधार कई असंबंधित क्षेत्रों का ज्ञान और अंतर्दृष्टि है। एकमात्र उपाय किताबें और समाचार पत्र पढ़ना है। कभी कभी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान 9 साल पहले पढ़े गए अखबार के लेख की तस्वीर होती है। इतिहास जानकारी है, जो कई बार हो चुका है वही होगा। पूरे मानव इतिहास में जो कुछ भी मनुष्यों के लिए अच्छा रहा, वो हमारे लिए भी कई गुना अच्छा होगा। जानकारी का स्रोत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह एक लेख है तो चलिए। विश्वसनीयता को नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी रुचि लोकप्रियता में है। यदि यह स्टैनफोर्ड का वैज्ञानिक अध्ययन है तो इसे एक अलग महत्व दिया जाना चाहिए। क्या ये आपकी आंखें हैं जिन्होंने देखा? प्रोफेसर, एक रिपोर्टर को किसी भी स्रोत को विश्वसनीयता प्रदान करनी चाहिए। संदेह हमेशा संदेह के लिए जगह छोड़ें, भले ही आपकी आंतरिक आवाज आपको पहले से ही एक निश्चित दिशा में भेज चुकी हो, कुछ इस तरह की, ये स्पष्ट है कि वह एक चोर है। इसके अलावा अपने अंतर्ज्ञान या पहले उत्तर पर भी संदेह करें, तुम्हारा मन देता है। हमारा मस्तिष्क आलसी है, इसीलिए हमारी सोच आलसी है। वह हमेशा हर चीज को अंतक जांचता नहीं है। मस्तिष्क में हर समय हर चीज के बारे में सोचने की ताकत नहीं होती है, इसलिए वो उत्तर निकालता है। जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक संदेह करें सच, दूसरों का सच नहीं, आपका। यही तो सामान्य स्वास्थ्य कोष में लिखा है या किसी प्रोफेसर ने कुछ कहा है, बिना स्वतंत्र विचार के इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो बातें मैं कहता हूं उनमें भी जांचें कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। हाँ, कभी कभी हर कोई गलत होता है। धारा के विपरीत तैरने का मतलब यह नहीं है कि आप नदी में डूब जाएंगे। कभी कभी हर कोई गलत होता है और आप सही होते हैं। एक बच्चे की तरह सोचे, छोटे बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ संभव है। जब तक कई चीजें उनकी समझ में नहीं आ जाती, तब तक वे कल्पना करने से डरते नहीं हैं। जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं, उन्हें इस तरह से अपनाएं। स्वतंत्र सोच में यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को हर चीज के बारे में सोचने की अनुमति दें, न कि केवल उस क्षेत्र के बारे में जिसमें हम सहज महसूस करते हैं। अर्थात, यदि अब तक हम 0 से 10 तक के क्षेत्रों के बारे में सोचते थे, तो अपने विकल्पों को 100 तक बढ़ाएं। मान लीजिए कि हम इसराइल में ट्रैफिक जाम के बारे में सोचते हैं, और फिर हम लेन जोड़ने के बारे में सोचने में सीमित हैं। अन्य देशों या अन्य क्षेत्रों से अन्य तरीकों के बारे में सोचने का प्रयास करें। शायद शहरों में कारों के प्रवेश को भी सीमित कर दिया जाए। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि विचार को कैसे मोड़ा जाए। जब भी संभव हो, स्तर विशेष से सामान्य की ओर और फिर विशेष की ओर बढ़ते हैं, और हमेशा एक उच्च कानून खोजने का प्रयास करें। यदि मैं ग्लूटेन खाने पर पेट दर्द से पीड़ित होता हूं और मेरे पास प्रमाणित संवेदनशीलता नहीं है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैं दुनिया में एकमात्र व्यक्ति नहीं हूं जो ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील है। सीलिएक माने बिना, और यहां से आप नियम पर लौटेंगे, जाहिर तौर पर हर कोई ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील है, लेकिन इसकी और जांच की जानी चाहिए। और वास्तव में इस शोध में आप शायद ये समझने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति हैं, क्या हर कोई ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील है। कभी कभी एक निजी मामला हमें उच्च नियम खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम बिना दांतों वाले किसी व्यक्ति को नशीली दवाएं पीते हुए देखते हैं, तो हम मान सकते हैं कि धूम्रपान करने वाली दवाओं से खनिजों की कमी के कारण दांत खराब हो जाते हैं। विशेष से सामान्य की ओर छलांग लगाना खतरनाक है, लेकिन यह बहुत लाभदायक है क्योंकि यह अवलोकन का उपयोग करता है, और ऐसी चीजें हैं जो केवल हम देखते हैं, और फिर लाभ हमारे लिए अद्वितीय है। कभी कभी किसी अन्य जगह से एक कानून एक निजी मामले पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, आप एंट्रापी के नियम को जानते हैं। पूरा ब्रह्मांड अव्यवस्था की दिशा में जाता है और आपको एंट्रापी को कम करने के लिए ऊर्जा का निवेश करना पड़ता है, जिसका अर्थ है क्रम। जब हम घर को साफ करते हैं तो यह इसका एक विशेष मामला है, क्योंकि घर मिलता है ये लाखों तरीकों से अस्त व्यस्त है, लेकिन इसे व्यवस्थित करने के केवल कुछ ही तरीके हैं। घर को व्यवस्थित करने में ऊर्जा नहीं लगती, लेकिन सफाई करने में बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। स्तरों में ये छलांग व्यक्तिगत मामलों के लिए फ्रेम लेना वास्तव में उपयोगी है। प्रवेश स्तरों पर आप एक लक्षण को समस्या से अलग करना भी सीखेंगे। जब हम लक्षण से उबर जाते हैं तो कई बार समस्या सामने आती है। क्या आपकी पीठ में दर्द होता है? यह उस कुर्सी के कारण नहीं है जिस पर आप बैठे हैं। क्या तुम्हें घाव हो गया? क्या आप अनिद्रा से पीड़ित हैं? तत्काल कारण की तलाश न करें, कारण की व्यापक जांच करें। विज्ञान में विज्ञान का अर्थ है कि आप गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, संभाव्यता और जीव विज्ञान को उस स्तर पर समझते हैं और लागू करते हैं जहां आप इस प्रश्न के बारे में स्वयं सोच सकते हैं कि क्या इसका कोई मतलब है। ये आपकी गणना और समझ है। इसके अलावा आपको ये तय करना होगा कि क्या विज्ञान पर्याप्त संभावना के साथ सत्य है। यदि संभव हो तो हमेशा विज्ञान की ओर वापस जाएं। विज्ञान अक्सर हमें कुछ निश्चित उत्तर देता है, और कुछ निश्चित उत्तरों के साथ आप उत्तर की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए इस सवाल में कि क्या चीनी हमारे लिए स्वस्थ है? विज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि शुद्ध चीनी अधिकांश शरीर प्रणालियों के लिए अच्छी क्यों नहीं है। संभाव्यता और गणना आपको परिणामों की संभावना प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने में मदद करेगी। कैलकुलस भी 80% उत्तर देता है, किसी कठिन प्रश्न का 100% उत्तर देना दुर्लभ है। स्वतंत्र विचार न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संभाव्य उपकरणों का उपयोग करता है। 100% सत्य तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी 80% भी काफी होता है। उदाहरण के लिए, क्या लाल मांस मनुष्यों के लिए उपयुक्त है? यहां कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन एक ऐसा उत्तर है जिस पर दांव लगाने लायक है। यदि टेक्नियन से स्नातक करने वाले अधिकांश इंजीनियर स्नातक होने के 2 साल के भीतर NIS 50,000 प्रति माह कमाएंगे, तो विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग स्नातकों की तुलना में ये बेहतर है कि मैं टेक्नियन में अध्ययन करूं। यह निश्चित नहीं है, लेकिन ये करीब है। ये समझना जरूरी है कि भले ही परिणाम अच्छा न हो, आखिर में निर्णय सही था। अंकगणित और अंकगणित का प्रशिक्षण हमें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। चूंकि गणना में कोई राय नहीं होती, यह एक अद्भुत उपकरण है जो सत्य के जितना करीब संभव हो सके पंक्तिबद्ध करने में मदद करता है। गणित को समझना, गणना करना, दूसरी बुद्धिमत्ता की तरह है। जब आप जानकारी और मॉडल को गणित के साथ जोड़ते हैं तो आपको एक बुनियादी सच्चाई मिलती है जो वास्तविकता को समझने में मदद करती है। अंत में, यहां सभी उपकरण हमें वास्तविकता को समझने और थोड़ा आगे का अनुमान लगाने में मदद करने के लिए हैं। कम से कम दूसरों की तुलना में अधिक, क्योंकि आपका लाभ दूसरों की तुलना में तेजी से दौड़ने या बल्कि दौड़ने की गति से होता है। सूचना, गणित और तर्क को मिलाकर अच्छे निर्णय लें, और यह बिल्कुल स्वतंत्र विचार है। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक साधारण समीकरण के आधार पर +500 की स्थापना की, जो मानता है कि अल्पकालिक व्यापार यादृच्छिक है और इसलिए अनंत पर शून्य की अपेक्षा शून्य ही रहती है। हमने टेक्नियन में भी कुछ ऐसा ही सीखा। मुझे दूसरों की तुलना में थोड़ी बढ़त हासिल थी और मैंने इसका इस्तेमाल और टूल 5 की मदद से अद्भुत साझेदारों के साथ एक कंपनी शुरू करने के लिए किया। कंपाउंडिंग एक सार्वभौमिक कानून है जो न केवल निवेश पर लागू होता है, ये दुनिया के आश्चर्यों में से एक है और शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। जब आप जो सीखा है उसे निवेश करते हैं, ध्यानु जीवन में रुचि वापस आ जाती है, क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र से एक उदाहरण, 10% वार्षिक ब्याज पर 25 वर्षों के लिए NIS 10,000 का निवेश NIS 110,000 प्राप्त करेगा। ये पैसे का 11 गुना है। करियर में एक उदाहरण, जब आप पढ़कर किसी पाठ्यक्रम, अकादमिक अध्ययन या किसी अन्य तरीके से हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे द्वारा प्राप्त नए ज्ञान के आधार पर आवेदन के लिए अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। जो नहीं सीखता वह हमेशा वहीं रहेगा जहां रुका था। डोट, यह मूल रूप से सीखने में रुचि है जो भारी मुनाफा दिला सकती है। क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आपने जो सीखा है उसे पुनः निवेश करें। स्मार्ट और सफल लोग यही करते हैं। जब जानकारी के 2 स्रोत होते हैं जो आपको स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर देते हैं, तो इससे संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए कि प्रश्न, क्या आज लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं जनजातियों में? जनजातियों के करीब कुछ खोज रहे हैं, आइए बताएं कि क्या गांव के लोग शहर के लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं। और हाँ, इसे पार करना सार्थक है क्योंकि मैंने एक प्रकृति फिल्म देखी और जनजाति के सदस्यों ने अपनी हंसी नहीं रोकी। यह अनुसंधान और जो मैंने अपनी आंखों से देखा के बीच जानकारी को पार करने का एक उदाहरण है। और फिर यदि उत्तर नकारात्मक है तो यह एक व्यापक प्रश्न पूछने लायक है। जनजातियों में लोग आज की तुलना में अधिक खुश क्यों थे? इस स्तर को बढ़ाने से बहुत दिलचस्प उत्तर मिलते हैं। इसे केवल ऐतिहासिक जानकारी के रूप में तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप याद रखते हैं। आप वास्तविकता को फ्रेम करेंगे और आप फ्रेम को डोमेन में स्थानांतरित करेंगे। फ्रेम वह चीज है जिसे आप विज्ञान या आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से फ्रेम करते हैं। युक्ति यह जानना है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या कम है। हर क्षेत्र में हमारे दिमाग में मॉडल होते हैं, समान स्थितियों से तुरंत निपटने के लिए तैयार टेम्पलेट, जो वास्तविकता को परिभाषित करते हैं। आप जो देखते हैं उसकी त्वरित समझ के लिए ऐसे हजारों मॉडल हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने सामने किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं और आपको तुरंत कम खतरा महसूस होता है, यह एक मानसिक मॉडल है। हमारे पास सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और कई मॉडलों को परिभाषित करने और समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए विचार यह है कि विभिन्न क्षेत्रों के मौजूदा मॉडलों के बारे में सोचा जाए और नए मॉडलों पर उनका परीक्षण किया जाए जिन्हें हम बढ़ावा देना चाहते हैं। उदाहरण, कई महिलाएं मेकअप की तरह, लेकिन शायद वे बिना मेकअप के अधिक सुंदर हैं। उसी तरह शायद अच्छी तरह से रखे गए सार्वजनिक उद्यान अधिक सुंदर होते यदि वे प्राकृतिक होते। यह एक साधारण मॉडल स्थानांतरण है। इस विषय पर एक अच्छी किताब, एक मानसिक मॉडल को स्थानांतरित करना, ग्रेटर देन राज्य, ग्रेटर देन कंपनी, ग्रेटर देन मानव, जिस प्रकार एक व्यावसायिक कंपनी को कई वर्षों तक जीवित रहने के लिए समय के बदलावों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। जिम कॉलिन्स की पुस्तक बिल्डिंग कंपनीज के अनुसार, अंतिम जिम कॉलिन्स, आप ले सकते हैं यह मॉडल देश पर भी लागू होता है। देशों को कई वर्षों तक समृद्ध होने के लिए अपनी शासन प्रणाली का पता लगाने और उसे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। और मनुष्यों के लिए समृद्धि के लिए हमें अपनी राय और अपने कार्यों को वास्तविकता और नई जानकारी के अनुसार बदलने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र विचार अपने समाधानों का एक बड़ा हिस्सा मॉडलों, रूपरेखाओं और उनके अनुकूलन के हस्तांतरण के माध्यम से देता है। ऐसे मॉडल का एक उदाहरण उन जनजातियों की गतिविधि है जो आधुनिकीकरण से बहुत दूर है। प्रकृति में मनुष्य बिना जूतों के था और फिर उन्होंने इसे हमारे पैर नंगे पैर चलने के लिए बनाए गए थे और इसके अर्थ हैं मॉडल में ढाला। फिर जब आप देखते हैं जूतों पर आप उपरोक्त फ्रेम लगाते हैं और महसूस करते हैं कि नंगे पैर चलने का अनुकरण करने वाले न्यूनतम जूते ही मनुष्य की जरूरत है। पैरेटो सिद्धांत 80/20 नियम, यह मानसिक मॉडल बताता है कि लगभग 80% परिणाम 20% कारणों से आते हैं। आप इस सिद्धांत को विभिन्न क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, जैसे समय प्रबंधन, सबसे प्रभावशाली कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, बिक्री, सबसे अधिक लाभदायक ग्राहकों को लक्षित करना, या सॉफ्टवेयर विकास, सबसे महत्वपूर्ण बग को ठीक करना। मान लीजिए कि क्या आप अपने पैर की उंगलियों से धक्का देते हैं तो मुंह पर चढ़ते हो, मैं जानना चाहता था कि पैर से चलने का सही तरीका क्या है। पिछले उदाहरण की तरह, क्या हर कोई ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील है? जब आप कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो बहुत दुर्लभ है और संभवतः आप अकेले हैं जिसने इसे पूछा है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप सही रास्ते पर हैं। मुझे अक्सर खुद से या दूसरों से ऐसे प्रश्न पूछने को मिलते हैं जिनके बारे में मुझे विश्वास नहीं होता कि कभी पूछे गए हैं। उल्टा कभी कभी लुप्त जानकारी को उल्टा करके हल किया जा सकता है। इस सवाल पर कि क्या वे खमीर वाली रोटी खाते थे, इसका उत्तर मित्सवा के विपरीत मिलता है, पेशाच पर खमीर नहीं खाना चाहिए। यदि चामच, जो कि खट्टा है, खाने पर प्रतिबंध था, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाकी समय उन्होंने खमीरी रोटी खाई और फिर हमें विपरीत उत्तर मिला। यहां तक कि इस सवाल में भी कि ज्यादातर लोग खेल क्यों नहीं खेलते, कई बार जिस प्रश्न का उत्तर पाना आसान होता है वह है लोग खेल कूद क्यों करते हैं। आपको संभवतः सही उत्तर पर पहुंचने के लिए बस रिवर्स करना होगा। याद रखें, यह आमतौर पर संभवतः है। जुआ खेलने के लिए कभी कभी आपको मानसिक दांव में कूदना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। जब आपके दांव के सफल होने की अच्छी संभावना हो तो उत्तर पाने का प्रयास करने के लिए दांव लगाएं। कभी कभी हम फंस जाते हैं और थोड़ा जुआ खेलना पड़ता है। स्मार्ट दांव लगाना महत्वपूर्ण है। मध्यवर्ती निष्कर्ष गणित में एक लंबे प्रश्न को हल करने की तरह मध्यवर्ती गणनाएं भी होती हैं। ये सिर्फ अंतरिम निष्कर्ष है, ये हमें अंतिम उत्तर तक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरणों के साथ उपकरणों को लागू करना, सभी उदाहरणों में आप देखेंगे कि विचार स्वतंत्र है, घूम रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब तक आप एक ऐसे उत्तर पर नहीं पहुंच जाते जो संभवतः सही है 100% नहीं बल्कि उच्च प्रतिशत। जिस तरह चैट जीपीटी पूरे वाक्य की नहीं बल्कि एक एक शब्द की भविष्यवाणी करता है, ठीक इसी तरह हम सोचते हैं, अगले शब्द या अगले विचार के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। उसी तरह एक स्वतंत्र विचार उछलता नहीं है बल्कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करता है। सबके अलग अलग तर्क और अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादातर नतीजे करीबी होंगे। फुटबॉल के स्तर को कैसे सुधारें? जब आप उन देशों को देखते हैं जो अच्छे खिलाड़ियों को तैयार करने में कामयाब होते हैं, तो बहुत कम नागरिक समझते हैं कि वास्तव में क्या है। बच्चों को प्रशिक्षण का अच्छा अवसर देना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, यह उस सामान्य अंतर्दृष्टि का एक ढांचा है जो मैंने फुटबॉल में रखा था। प्रशिक्षण क्षमता पैदा करता है, फुटबॉल में ये थोड़ा अधिक जटिल है क्योंकि आपको नई चीजों को आजमाने के लिए कार्रवाई की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। दरअसल हम न सिर्फ फुटबॉल के स्तर को सुधारते हैं बल्कि बच्चों को घर के पास की पिचों पर खेलने का आनंद भी दिलाते हैं और पड़ोस में होने वाले एक तरह के खेल की प्रैक्टिस भी कराते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। यहाँ मुनाफा बहुत ज्यादा होता है इसलिए बच्चे को मजा भी आता है और अच्छे खिलाड़ी भी तैयार होते हैं। हाल के वर्षों में इंटरनेट और एकांत के कारण दुनिया से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज गायब हो गई है वह है आस पड़ोस के खेल। आप आसानी से देख सकते हैं जिन देशों और मोहल्लों में बच्चे बाहर दोस्तों के साथ खेलते हैं वहां अच्छे खिलाड़ी बड़े होते हैं, इसलिए हमें ऐसे खेल बनाने की जरूरत है ताकि वे बच्चों को प्रशिक्षण में पड़ोस की तरह बिना कोच के खेलने दें। इससे आजादी का अनुकरण होगा, ये पड़ोस में मौजूद है। बेशक घरों के पास फुटबॉल के मैदान बनाने से भी मदद मिलेगी क्योंकि वहां खेलना आरामदायक होगा और मैदान भरे रहेंगे। जहां मैं रहता हूं वहां हमने यही किया, हमने एक कोर्ट बनाया और यह निश्चित रूप से फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस खेलने वाले बच्चों और वयस्कों से भरा है। यदि आप एक और स्तर नीचे जाना चाहते हैं तो आप समझते हैं कि जितना छोटा बच्चा होगा संख्या उतनी ही कम होगी आपको कितने बच्चों को खेलना है, और बहुत सारे कोच इसके लिए दोषी हैं। और 7 साल की उम्र में उन्होंने 7-on-7 का खेल खेलने दिया। 7 साल की उम्र में उन्हें केवल 3-on-3 खेलना चाहिए ताकि वे देख सकें कि किसे पास करना है और गेंद पर बच्चों का ढेर नहीं होगा। क्या चलने का कोई सही तरीका है? यह एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है और जिसे मैंने अध्ययन में नहीं देखा है, मैंने इसे बस अपनी आंखों से देखा है। मेरे अपने कानों में भी इसे स्वतंत्र विचार का अवलोकन कहा जाता है। एक प्रश्न खींचना। अब मैं एक उपकरण निकालता हूं, प्रश्न की दिशा में एक उपकरण। क्या मनुष्यों को एक ही तरह से चलना चाहिए या प्रत्येक को अपने तरीके से चलना चाहिए रास्ता? उसी समय उत्तर पाने का प्रयास करें। हमारे अध्याय विकास के लाखों वर्षों में निर्मित और अनुकूलित हुए हैं। चलना मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला लगभग सबसे आम काम है, इसलिए इस बात की अच्छी संभावना है कि इसे विकासवादी जोड़ दिया गया है। जोड़ों की यांत्रिकी गति की भौतिक धारणाओं पर आधारित है। सबसे अधिक संभावना है कि चलने का एक विशिष्ट तरीका है जिसके लिए हम बने हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम बंदरों की तरह चलते हैं तो हम तुरंत घायल हो जाते हैं, लेकिन ये संभावना है कि इसके लिए जोड़ नहीं बनाए जाते हैं। अगर हम पूरी जिंदगी बंदर की तरह चलें तो हम निश्चित रूप से घायल होंगे और जोड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हम सिर्फ विज्ञान पर भरोसा नहीं करेंगे, हम जांच करेंगे कि चलने के दौरान अन्य जानवरों के साथ क्या होता है, जो वास्तव में एक स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश करना है। सभी जानवरों की जांच करना है, न कि केवल मनुष्यों की, जो एक प्रकार के जानवर हैं। और यहाँ एक दिलचस्प दरार है, क्योंकि आप निश्चितता के साथ देख सकते हैं कि एक निश्चित प्रजाति के सभी जानवर एक ही तरह से चलते हैं। कुत्ते, जेब्रा, चिंपैंजी और उनके जैसे अन्य लोग भी इसी रास्ते पर चलते हैं। अब हम फिर से अवलोकन का उपयोग करेंगे और प्रकृति फिल्मों के आदिवासी लोगों को भी देखेंगे। वे वास्तव में अपने चाल में समान हैं। अंतर तो है लेकिन वास्तव में छोटा है, अर्थात चलने में अंतर केवल आधुनिक मनुष्यों में है। इसलिए यह माना जा सकता है कि हम सभी को एक निश्चित तरीके से चलना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ऊंची एड़ी के जूते पर काल्पनिक महिला जानवरों के बीच अलग अलग टिप्पणियों के लिए तर्क लागू करती है। जूते और आदिवासी लोगों के जूते बिल्कुल सपाट होते हैं। जब मैं एक महिला को ऊंची एड़ी के जूते में चलने की कल्पना करता हूं, तो मैं तुरंत देखता हूं कि उसकी चाल कैसे बदल जाती है। यह एक काल्पनिक अवलोकन है। ये पता चलता है कि ऐसा एक उपकरण भी है। अब मुझे पता चला है कि इसका उपयोग करना भी अच्छा है। तो ये है, यहाँ एक मध्यवर्ती निष्कर्ष देना बहुत तर्कसंगत है कि यह स्वतंत्र सोच में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मध्यवर्ती निष्कर्ष ये है कि जूते हमारी चाल बदल देते हैं। वास्तव में मुझे पता है कि जूते हर समय बदलते हैं, और वर्षों से जूते में हवा के गुब्बारे के साथ साथ संकीर्ण जूते और सभी प्रकार की अन्य चीजें होती हैं जो दावे का समर्थन करती हैं। ऐसा क्यों होता है एक व्यक्ति एक निश्चित तरीके से चलता है? एक व्यक्ति जूतों के कारण एक निश्चित तरीके से चलता है, लेकिन जैसा उसने अपने माता पिता को देखा है उसके अनुसार भी चलता है। मैंने अवलोकन में देखा, बच्चों और माता पिता का चलने का तरीका कई बार एक जैसा होता है। आप यह मान सकते हैं और शर्त लगा सकते हैं कि चलने का तरीका भी अक्सर पर्यावरण से कम, बाग बगीचों से कम प्रभावित होता है। इसका परीक्षण अलग अलग घरों में पाले गए समान जुड़वां बच्चों पर किया जा सकता है, लेकिन मैंने ऐसे अध्ययन नहीं देखे हैं, इसलिए मैं एक शर्त लगा रहा हूं, जो स्वतंत्र विचार के लिए एक उपकरण का हिस्सा है। मुझे याद है कि मैंने एक मित्र से पूछा था, तुम कैसे चलते और सीधे खड़े होते हो? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता भी सीधे चलते और सीधे खड़े रहते हैं। हम इस अंतरिम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चलने का तरीका पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने माता पिता को उससे थोड़ा अलग तरीके से चलते हुए देखती है, और जूते भी हमारी चाल को बदल देते हैं। मेरा इंतजार करो, मैं नंगे पैर आ रहा हूं। तो प्रश्न का उत्तर यह है कि चलने का एक सही तरीका है और अधिकांश लोग इसका पालन नहीं करते हैं। अब जो कुछ बचा है वह चलने का सही तरीका ढूंढना है और संभवतः गलत तरीके से चलने से संबंधित लाखों समस्याओं को रोकना है। हाँ, हर कोई गलती करता है, लेकिन हम थोड़े से प्रयास से बड़ा लाभ कमाएंगे। संभवतः हजारों डॉक्टर लोगों को समस्या का नहीं बल्कि लक्षण का समाधान करते हैं, जो कि चलने का तरीका है। सौंदर्य फ्रेम का अवलोकन और उपयोग करके हम समझते हैं कि मॉडल इस तरह से चलते हैं जो हमें सुंदर दिखता है, क्योंकि यह सीधा है और स्वास्थ्य को प्रसारित करता है। मैंने निम्नलिखित विचार तैयार किया, जो कई बार सुंदरता को व्यक्त करता है वह सही आकार होता है, और इसे चलने पर लागू किया। सीधा सुंदर है, झुका हुआ कुरूप है। सीधा स्वस्थ है, झुका हुआ स्वस्थ नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने सीखा है। 2 साल का बच्चा बता सकता है कि क्या सुंदर है और क्या नहीं। ये समझना हमारी सहज प्रवृत्ति है कि कौन स्वस्थ है और कौन बीमार है। एक ही फ्रेम में सफेद और काले दांत। जब आप चलने वाली जनजातियों को भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि वे आमतौर पर छोटे कदमों के साथ चलते हैं और पैरों को सीधा करके और शरीर को आगे की ओर झुकाकर नहीं चलते हैं, जैसा कि बहुत से लोग चलते हैं, दौड़ते हैं और खड़े होते हैं। कि ये सीधे तौर पर कुछ ऐसा व्यक्त करता है जो सुंदर नहीं है और इसलिए संभवतः स्वस्थ भी नहीं है। और वास्तव में आप देख रहे हैं कि वर्षों से लोग झुकने की प्रवृत्ति रखते हैं, न केवल भोजन के कारण बल्कि उनके चलने, बैठने और खड़े होने के तरीके के कारण भी। और इससे हमारा लाभ, जो वास्तव में अधिकतम लाभ के लिए न्यूनतम प्रयास है न्यूनतम जूते और यहां तक कि नंगे पैर पहनकर सीधे और तंगकर चलें। और अतिरिक्त लाभ तब होगा जब हम यहां से और भी कई चीजें समझेंगे और उनसे लाभ भी उठा सकेंगे। क्या हमें नमक डालने की जरूरत है या निर्माता ने नमक मिलाया? अवलोकन में मैंने देखा कि जब मुझे बिना नमक के खाने की आदत होती है तो यह मुझे परेशान नहीं करता है, लेकिन जब मुझे इसकी आदत हो जाती है तो यह मुझे परेशान करता है कि इसमें नमक नहीं डाला गया है। इसके अलावा जब मैं मांस जैसे नमक वाले खाद्य पदार्थ खाता हूं तो मुझे बहुत प्यास लगती है और मैं कम से कम 1 लीटर पानी पीता हूं। इसके अलावा एक अजीब अप्रिय भावना होती है, खासकर बहुत नमकीन खाद्य पदार्थों के बाद। आइए संदेह से शुरू करें। मुझे दृढ़ता से संदेह है आपको किसी भी भोजन में नमक जोड़ने की आवश्यकता है, भले ही हर कोई ऐसा करता है। अवलोकन से मैंने निष्कर्ष निकाला कि नमक चीनी जैसे कई अन्य पदार्थों की तरह वास्तव में स्वादिष्ट है, क्योंकि हमें इसकी आदत हो जाती है। अगर हम इसे हटा देते हैं तो हम आनंद लेते हैं भोजन उतना ही। दूसरे शब्दों में मुझे संदेह था कि नमक के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं है, एक दावा जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। पूर्वजों ने नमक के बिना क्या किया? आइए दिलचस्प डेटा के साथ जारी रखें। प्रारंभिक साक्ष्य अधिकांश नमक प्रसंस्करण विधियां लगभग 6000 BC की हैं, जब रोमानिया में रहने वाले लोग नमक निकालने के लिए झरने का पानी उबालते थे। चीन में एक नमक का कारखाना लगभग उसी काल का है। होमो सेपियंस, जो हमारी मानव प्रजाति है, लगभग 300,000 वर्षों से अस्तित्व में है। वानर 7 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है। विज्ञान से हमें पता चलता है कि नमक, जो सोडियम क्लोराइड है, ये 40% सोडियम और 60% क्लोराइड से बना है। इसमें लगभग 6 ग्राम नमक है, इसलिए वे 2.4 ग्राम सोडियम है। अब वे उपकरण का उपयोग करते हैं और पूछते हैं, बिना नमक डाले आप कितना सोडियम खाते हैं? इससे प्रतिदिन लगभग 0.5 ग्राम सोडियम निकलता है। 100 ग्राम स्टेक में 0.06 ग्राम सोडियम होता है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में लगभग 0.005 सोडियम होता है। गूगल और ChatGPT के माध्यम से डेटा के एक नमूना परीक्षण से पता चलता है कि आज एक औसत व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 3.4 ग्राम सोडियम का उपभोग करता है। 1.5 चम्मच नमक पर विचार करें। और यहां इस बिंदु तक का पहला स्वतंत्र विचार है, विकास के अधिकांश वर्षों के दौरान मनुष्य प्रतिदिन 0.5 ग्राम सोडियम का सेवन करता था। कुछ हजार साल पहले इसमें वृद्धि शुरू हुई और आज ये 3.4 ग्राम है, यानी 7 गुना। 14 लीटर पानी पीना सुखद नहीं है। अब हम एक अवलोकन डेक से फ्रेमिंग का उपयोग करेंगे। मैं दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीता हूं। अगर मैं 7 गुना ज्यादा यानी 14 लीटर पानी पीऊं तो मुझे कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा। अब मैं दाम लगाकर लेबल बढ़ाता हूं और यहां फ्रेम करता हूं। मनुष्य जिन सामग्रियों का उपभोग करता है उनमें 20-30% तक बदलाव किया जा सकता है और शरीर जानता है कि उनसे कैसे निपटना है। 7 बार यह पुनर्तः विक्षुब्ध हो जाता है। यह मेरी रूपरेखा है। अधिकांश विज्ञान से पता चलता है कि नमक की खपत में वृद्धि और विभिन्न बीमारियों के बीच एक संबंध है। इसलिए मैं सामान्य दिशा में हूं। किडनी के रिजोल्यूशन तक जाना भी संभव है। किडनी कैल्शियम सहित शरीर में विभिन्न खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सोडियम नमक का सेवन अधिक होता है तो गुर्दे संतुलन बनाए रखने के लिए मूत्र में अधिक सोडियम उत्सर्जित करेंगे। हालांकि इस बढ़े हुए सोडियम उत्सर्जन से कैल्शियम का उत्सर्जन भी बढ़ सकता है। सोडियम और कैल्शियम दोनों गुर्दे में समान परिवहन तंत्र का उपयोग करते हैं। जब उत्सर्जित करने के लिए बहुत अधिक सोडियम होता है तो ये कैल्शियम को पुनः अवशोषित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिसका अर्थ है कि अधिक कैल्शियम मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है। समय के साथ कैल्शियम का ये बढ़ा हुआ उत्सर्जन ऑस्टियोपोरोसिस के विकास में योगदान कर सकता है, जैसे शरीर खोए हुए कैल्शियम की पूर्ति के लिए हड्डियों को तोड़ना शुरू कर सकता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि मूत्र में कैल्शियम का उच्च स्तर गुर्दे की पथरी के निर्माण में योगदान कर सकता है। जीव विज्ञान छोड़ें और इसके ऊपर जाएं। यहां स्वतंत्र विचार यह समझने की कोशिश करना नहीं है कि किसी रसायन से नमक हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं है और जैविक दृष्टिकोण, लेकिन सुपर कानूनों यानी अन्य स्तरों के कानूनों को हमारा मार्गदर्शन करने दें। एक सहायक उपकरण जो हमें अधिक लाभ देगा वो पूछना है, मनुष्यों ने इन सभी वर्षों में नमक की खपत क्यों बढ़ा दी है? क्यों क्या खाद्य कंपनियां और रेस्तरां हर चीज में नमक मिलाते हैं? मनुष्य इस अतिरिक्त नमक को क्यों स्वीकार करते हैं? वे सब कहां हैं? मौत का समुद्र या नमक का समुद्र? अब मैं हर चीज को अपने तर्क से जोड़ता हूं, हर किसी का अपना अलग तर्क है। मेरा तर्क कहता है कि नमक डालना अनावश्यक है, क्योंकि इससे ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पाते। विकास के अधिकांश वर्ष हमने नमक के बिना गुजारे। अर्जित स्वाद के कारण हमने हर भोजन में नमक मिलाया। आज तक हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां बिना नमक मिलाए कोई भोजन नहीं बनता। हर भोजन का अपना प्राकृतिक नमक होता है। नमक शरीर में स्वाद प्रणाली को भ्रमित कर देता है। अंत में मुझे एक और अवलोकन भी याद आया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैल्मन और ट्यूना को बिना नमक के डिब्बे में संरक्षित किया जाता है और वे कई वर्षों तक अच्छे रहते हैं। मैंने उन्हें चखा और वे वास्तव में स्वादिष्ट हैं। क्या लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक संचारशील होती हैं? अपने अवलोकन से मैंने देखा है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में बहुत अधिक बातचीत करती हैं। मुझे याद है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में ऑटिज्म बहुत कम आम है। मैं स्मृति से एक फ्रेम निकालता हूं कि ऑटिज्म संवादात्मकता के विपरीत है, और फिर मैं शर्त लगाता हूं कि लड़कियों में ऑटिज्म कम आम है क्योंकि उनकी नींव शुरू से ही अधिक संवादात्मक है। और ये दूसरा सवाल है कि लड़कियों में ऑटिज्म कम आम क्यों है? उत्तर यहां ठीक है। मैं विकासवादी विज्ञान से आगे बढ़ता हूं कि जब पुरुष शिकार पर जाते हैं तो लड़कियों को परिवार और अन्य परिवारों के साथ संवाद करना पड़ता है, इसलिए मुझे यकीन है कि वे स्वाभाविक रूप से अधिक संचारी साबित हुई हैं, और यह एक और विज्ञान है। मैं एक अवलोकन से निष्कर्ष निकालता हूं कि जो लड़के यथार्थवादी थे वे कम संचारी थे, और लड़कियों की तुलना में कई अधिक यथार्थवादी लड़के थे, और फिर मैं शर्त लगाता हूं कि यथार्थवाद और संप्रेषणीयता के बीच एक लेन देन है। अंत में मैं यह निष्कर्ष निकालने के लिए विज्ञान का उपयोग करता हूं कि लड़कियां हैं वास्तव में लड़कों की तुलना में औसतन अधिक संचारी। एक सुंदर प्रश्न जो पूछा जाना चाहिए कि यह पर्यावरण है या उद्यान? स्पष्ट रूप से जीन।